તારીખ 24/12/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 710 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 140 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત આંક 710 ગુજરાતીમાં પાનો 519 છે. હિન્દી મેં 527 527 પેજ હૈ હિન્દી ગ્રંથ મેં. नीचे भान होने पर स्वभाव परिणामी है ये वचन चलता है स्वाध्याय में. आत्मा स्वभाव परिणामी तो है, स्वभाव परिणामी ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है वो तो त्रिकाल स्वरूप है. त्रिकाल स्वभाव परिणामी आत्म स्वरूप होने पर भी वो संसार अवस्था में स्वभाव परिणाम में क्यों नहीं परिणमता है, ये सवाल पैदा होता है. ठीक है कि आत्मा स्वभाव परिणामी है, यानी स्वभाव रूप परिणमन करना यही इसका स्वरूप है. फिर भी हम अनुभव कर रहे हैं कि अनंत काल से संसार में आत्मा अपना स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर रहा है. आत्मा स्वभाव परिणामी है ऐसा भान हो जाता है तो स्वभाव परिणमन होने लग जाता है, और वहां तक और अनादि से ऐसा भान नहीं होने से स्वभाव परिणामी होने पर भी स्वभाव रूप परिणमन नहीं हो रहा है. तो स्वभाव है वो स्वभाव रूप रह जाता है, उसका परिणमन बाहर नहीं होता. आत्मस्वरूप का भान करने का सत्शास्त्रों में उपदेश है, ज्ञानियों का भी उपदेश है कि आत्मा अपने स्वरूप के भान में आ जाए तो उनकी हर तकलीफ शांत हो जाती है और स्वभाव रूप निराश को शांत रूप परिणाम करने लग जाता है. आत्मा का स्वभाव तो शांत स्वभाव है और शांत रूप परिणमन करना भी इसका त्रिकाल स्वरूप है. जब जब आत्मा के परिणाम में अशांति होती है तब यही सोचना कि हम विभाग पढ़ में आए हैं. बेभानपणे में भी उतना विचार तो कर सकते हैं कि हम बेभान हैं इसलिए अशांति चल रही है. क्या बेभानपणे में भी उतना विचार करने की तो शक्ति रहती है संगनी पंचेंद्रिय जीव को कि ये अशांति जो हमको हो रही है ये हमारा बेभानपणा के कारण से हो रही है. स्वरूप के भान में आत्मा शांत रूप परिणमन करने लगता है हर हालत में हर परिस्थिति. इसका मर्म है कि हमारी बेभानता मिट जाए और हमारे स्वरूप के भाग में आ जाए, ये वचनामृत का मर्म है.
से नहीं है प्रभाव का करता है। स्वरूप से वो प्रभाव का करता हुए तो तीनों काल प्रभाव हुआ करे, मिटे ही नहीं, इसलिए ऐसा स्वरूप नहीं है। लेकिन जब भ्रांति होती है, भ्रांति में क्या होता है कि वर्तमान जो कर्मजनित अवस्था है, मैं ऐसा हूं, ये जो भ्रांति है वो उसको प्रभाव कराता है। इस जगत में मैं निरपेक्ष आत्मद्रव्य हूं, क्या लेना है, इस सारे विश्व में मैं एक आत्मद्रव्य हूं जो निरालंब निरपेक्ष हूं। मुझे किसी का आलंबन की आवश्यकता नहीं और मुझे किसी की अपेक्षा नहीं, मैं अपेक्षा वाला नहीं। ऐसा आत्मद्रव्य मैं हूं तो उसके बाद में शांत स्वभाव परिणाम चालू रहेगा। और ऐसा भान नहीं है तो भ्रांति हो गई कि मैं फलाना 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 हूँ, इसलिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं देश में कुछ नहीं हूँ, मेरे देश में मैं मेरे देश का वतनी नहीं हूँ, मेरे गांव में मैं इस गांव वाला नहीं, और मेरे इस ग्रुप में मैं ग्रुप वाला नहीं, और मेरे कुटुंब में मैं कोई संबंध वाला नहीं, मेरे परिवार में मैं कोई संबंध वाला नहीं। मैं एक जगत का स्वतंत्र द्रव्य हूँ, आत्मद्रव्य हूँ जो निरालंब निरपेक्ष हूँ। ऐसा भान होने से शांत 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 आत्मशांति का परिणाम रहेगा, क्योंकि कैसा उसका स्वरूप है, स्वभाव है। भ्रांति होगी, प्रभाव हुआ ही करेगा, और अशांति होगी और बढ़ती भी जाएगी, होगी तो सही लेकिन बढ़ती भी जाएगी। स्वरूप का विभान पड़ा है लेकिन कर्मजनित पर्याय का सभान पड़ा है, इसलिए अशांति बढ़ती है कि मैं फलाना फलाना फलानी फलानी, ये जो कर्मजनित अवस्था है उसका सभान पड़ा है, वही इसको अशांति का कारण है। विभान पड़ा मैंने वो जैसे आदमी बेशुद्ध हो जाता है बीमारी के कारण से, यहाँ तो विभान पड़ा मैंने कि कर्मजनित अवस्था का सभान पड़ा और मूल स्वरूप का विभान पड़ा, ऐसी अवस्था है। और ये अवस्था रोगिष्ट अवस्था है, वो भाव रोग है, वो परिभ्रमण का कारण रूप है, फल स्वरूप परिभ्रमण होता है और बहुत दुखी होता है। सर्वथा स्वभाव परिणाम वह मोक्ष है, और जब पान होता है स्वभाव रूप परिणाम होने लगता है, जब पूरा पूरा स्वभाव परिणाम होता है उसको भगवान मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई स्थान नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई संयोग नहीं, कोई वियोग नहीं, अपना परिपूर्ण स्वभाव रूप परिणाम जैसा स्वरूप है उस रूप संपूर्ण शुद्ध परिणाम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कहो निज शुद्धता, इसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की परिभाषा ज्ञानियों ने अनेक पहलू से मोक्ष की परिभाषा बनाई है। यहाँ स्वभाव परिणाम सर्वथा स्वभाव परिणाम वह मोक्ष है ऐसा कहा है। कोई कहेंगे कि निष्कर्म अवस्था रूप मोक्ष है, परिपूर्ण शुद्धता वो मोक्ष है, अनेक प्रकार से मोक्ष की परिभाषा है, क्योंकि अनेक गुण उसमें प्रकट होते हैं। मोक्ष में सर्वगुण संपूर्ण शुद्ध प्रकट होता है, कभी किस गुण से, कभी किस गुण से, कभी किस गुण से मोक्ष की परिभाषा आती है, उन सब सही है। सदगुरु, सत्संग, सदशास्त्र, सदविचार और संयम आदि उनके साधन है। सबसे पहले, सबसे बड़ा साधन सदगुरु है। सदगुरु जैसा कोई साधन नहीं है। वो नीचे क्रम में लिया, उसमें सदगुरु की काफी बात आई थी। सदगुरु साधन है, सत्संग भी साधन है, इसलिए सत्संग गुरु साधन का सेवन मुमुक्षु को हमेशा हमेशा करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सत्संग का त्याग करने का निर्णय नहीं लेना। क्या और सब पदार्थ का त्याग करने का निर्णय लो, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सत्संग का त्याग करने का निर्णय एक साधन है, वो साधन छूट गया तो फिर फिरने का कोई उपाय रहेगा। सत्शास्त्र वो भी जब सत्संग नहीं मिले ऑल्टरनेटिव बात है, सत्शास्त्र के वो भी साधन है। और वो भी उपलब्ध नहीं हो, शास्त्र भी घर में नहीं हो, या ऐसी परिस्थिति में हो कि जहाँ हमारे हाथ में शास्त्र भी नहीं हो, सत्संग भी नहीं हो, गुरु भी नहीं हो, तो सद्विचार में रहना, पहला चाहिए वो नहीं है तो सत्संग चाहिए, वो नहीं मिले तो सत्शास्त्र चाहिए, पर वो भी नहीं हो तो क्या करें, वो नहीं हो तो आत्मकल्याण के विचार करें। सद्विचार मैंने आत्मकल्याण के विचार करें, और आत्मकल्याण के विचार में सद्गुरु सत्संग का विचार भी आए बिना रहेगा को भी सदविचार कहते हैं।
आपने किया सत्संग को छोड़ने का विचार नहीं करना, आप जीवन से परम सत्संग को छोड़ने का कभी विचार नहीं करना।
ओके, सत्संग को परम सत्संग,
इससे क्या संतोष आ जाता है कि चलो सत्संग को मिलेगा हमको, कहते मतलब
ठीक है। जहाँ से जिसको लाभ होवे वो करना, चाहे सत्संग हो चाहे परम सत्संग। हाँ, अपने पारमार्थिक लाभ को देखना है, और संयम आदि उसके साधन है। संयम मैंने वृत्ति को स्वच्छंद से रोकना है, यहाँ संयम मैंने वो संयम नहीं है जो मुनि दशा में या पंचम स्थान में संयम होते हैं, वो बात नहीं। संयम मैंने अपनी भूमिका में जो वृत्ति होनी चाहिए संयमित ऐसा होना चाहिए आदि उसके साधन है। आत्मा के अस्तित्व से लेकर निर्वाण तक के पद सच्चे हैं, अत्यंत सच्चे हैं, क्योंकि प्रकट अनुभव में आते हैं। क्या कहते हैं कि आत्मा है, एक उपदेश का पद है कि आत्मा है, तो वो पद सच्चा है। वहां से लेकर के आत्मा का मोक्ष हो जाए, प्रथम उपदेश का कौन सा देंगे कि आत्मा है, आप श्रद्धा करो, विश्वास करो कि आत्मा है। श्रद्धा का कार्य अस्तित्व को ग्रहण करने का है, सबसे पहले श्रद्धा का परिणाम चतुर्थ गुण स्थान में होता है। तो वहां से लेकर के चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के निर्वाण पद का जो उपदेश दिया है, ये सभी अवस्था और उसके उपदेश सच्चे हैं, अत्यंत सच्चे हैं,
प्रकट अनुभव में आते हैं। ज्ञानियों ने कहा है, शास्त्र में लिखा है, इसलिए नहीं, हमारे अनुभव में प्रकट रूप से वो बात आ रही है। वो तो शास्त्र में ये सब पद कहे हैं, आत्मा का अस्तित्व से लेकर के निर्वाण पद का उपदेश दिया है, वो बिल्कुल सच्चा है, उसमें कोई संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। निशंक सच्चे हैं और हमारा अनुभव भी यही बोलता है। भ्रांति रूप से आत्मा प्रभाव का कर्ता होने से, ऊपर क्या ना, भ्रांति रूप से प्रभाव का कर्ता है, शुभाशुभ कर्म की उत्पत्ति होती है। क्या इसका फल आया प्रभाव का कर्ता में, या तो शुभ करेगा या तो अशुभ करेगा। भ्रांति में पड़ा हुआ जीव शुद्ध परिणाम नहीं कर सकेगा, क्योंकि शुद्ध परिणाम कर सकने की उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो सकेगा ही। आत्मा के लक्ष्य से शुभाशुभ भाव रहित आत्मभाव होते हैं, वो शुद्ध परिणाम है। वो भ्रांति में जो पड़ा है कि मैं फलाना हूँ, मैं मनुष्य हूँ, उसको शुद्ध परिणाम कतई नहीं होगा। उसको दो ही प्रकार के परिणाम होगा, या तो शुभ या तो अशुभ। मतलब वो या तो कषाय का तीव्र परिणाम करेगा या तो कषाय का मध्य परिणाम करेगा। कषाय का अभाव करके कषाय रहित परिणाम वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि भ्रांति में पड़ा है, उसको शुद्ध स्वरूप का भान नहीं है। और शुद्ध परिणाम तो शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से होता है, तो जो शुद्ध स्वरूप का ही भान नहीं है तो अवलंबन तो आएगा कहाँ से, तो शुद्ध परिणाम होगा। तो या तो शुभ परिणाम होगा या तो अशुभ परिणाम होगा। शुद्ध परिणाम तो धात्म स्वरूप के अवलंबन से होता है, अवलंबन हाथ आया परिणाम शुद्ध हुआ। जहां तक अवलंबन नहीं है परिणाम की शुद्धता कहते हैं, पात्रता कहते हैं, योग्यता कहते हैं, शुद्ध होने की, लेकिन अभी शुद्ध हुआ नहीं। पाव भाषण के बाद भी मुख्य रूप से नहीं कह सकते, अनुभव से मुख्य बने अनुभव के बाद भाव भाषण में क्या फर्क हुआ कि मिथ्यात्म अत्यंत मंद हुआ, अभाव होने के लायक हो ऐसी स्थिति होगी, और जो ज्ञान है वो स्वभाव सन्मुख हुआ, पुरुषार्थ भी स्वभाव सन्मुख हुआ। ये तीन गुण में मेजर चेंज आया है, बड़ा फर्क हुआ, उतनी बात है। लेकिन शुभ अशुभ चालू है, चारित्र गुण में शुद्धता नहीं आई, वितरागता नहीं आई। चारित्र गुण में वितरागता चौथे गुण भाव को वितराग भाव को कहते हैं। श्रद्धा ज्ञान के परिणाम में जो चेंज हुआ और आत्मभाव हुआ उसको शुद्ध भाव कहने का रिवाज नहीं है। वितरागता नहीं हुई क्योंकि श्रद्धा ज्ञान में फर्क हुआ वो बात ठीक है, लेकिन श्रद्धा मिथ्या तो है ना, उसकी जाति तो सम्यक नहीं हुई है। ज्ञान में जो फर्क हुआ तो धर्म तो दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तीनों की एकता होने चाहिए। मूल मार्ग में क्या कहा रूपाल, दर्शन ज्ञान चारित्र में एकता रे एक पणे अने अविरुद्ध मूल मार्ग ते परमार्थ थी रे कहो सिद्धांते बुद्ध। बुद्ध मैंने ज्ञानी, सिद्धांत में ज्ञानियों ने मोक्ष मार्ग ऐसा बतलाया है तो उसके पहले मोक्ष मार्ग हम कहें तो सिद्धांत टूटता है। हाँ,
क्या होता है, सिद्धांत टूटता है। कैसे टूटता है कि श्रद्धा की जाति मिथ्या है, अब कैसे धर्म है ऐसा कहोगे। भले पतला है लेकिन है तो मिथ्या, पतला भी है तो मिथ्या, सम्यक तो नहीं ने, तो उसमें हमको राजी होना नहीं है। तो चलो पतला तो होगा ने, इसमें नहीं राजी होना है। मिथ्या है इसलिए सिद्धांत टूटता है। सिद्धांत क्यों टूटता है कि श्रद्धा मिथ्या है इसलिए सिद्धांत टूट जाता है, तो उसको मोक्ष मार्ग कैसे कहे, उसको धर्म कैसे कहे। इसलिए आखिर तक के सूक्ष्म विकल्प में रहा है स्वरूप के, और अनुभव में नहीं आया है। तो समय सार के 143 गाथा में लिखा कि इससे क्या हो गया, भावभाषण थयो सम्यक सम्मुख थयो, पण हजी तने निश्चय नहीं नो पक्ष रह्यो छे, हजी तू पक्षवाळो छो, निष्पक्ष नथी। आ मार्ग में वितराग मार्ग में निष्पक्ष जोईए, वितराग मार्ग में पक्षवाले का काम, स्वरूप के पक्षवाले का काम नहीं है। दूसरे का पक्षवाले का तो सवाल ही नहीं रहता है। इसलिए वितराग मार्ग में चलने वाले समाज में गुटबंदी का कोई स्थान नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड, उसका परमिशन नहीं मिलता है। नहीं वो तो बहुत विरुद्धता है, सवाल ही पैदा नहीं। आज्ञा है ही कहाँ, यहाँ तो स्वरूप का पक्ष वाले को बोला कि इससे क्या हो गया, स्थिति सो मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसकी कोई अभी कीमत नहीं कर रहे। वो तो कोई पर्याय, बारहवें गुणस्थान तक वो तो कहता है कि मुझे ये बुरी बात का पुसान नहीं। मुनि दशा में ये कहेगा, अमृत तो आता है लेकिन धीमी धार से आता है, हमको धीमी धार नहीं चलेगी, चलेगी नहीं है, हमको तो पूरा पूरा चाहिए। हमारा अधिकार तो पूरे का है, वो दूरा क्यों रखे, क्यों लेवे। एक बाप के दो बेटे होते हैं और बाप अपना हिस्सा देना चाहता है, तो दोनों बेटे क्या कहेंगे, 50% मार्ग दो। बाप कहेंगे देखो भाई थोड़ो इनका पक्ष है तो उसको 51% दूंगा, पर इसको 50 रहेगा, दिया तो एक फर्क हुआ दो का, 49 और 51 में फर्क तो दो का हो गया ना, दिया एक ज्यादा लेकिन फर्क हुआ दो का, मंजूर करेगा। मैं अपने उदारता से पूरा दे दूँ, 49 49 दे दूँ, लेकिन मेरा अधिकार 50 का है, मेरा अधिकार में 1% भी मुझे कम नहीं चलेगा। ऐसे जिसको स्वरूप का भान है वो कहेगा कि मुझे तो पूरा पूरा स्वरूप चाहिए, अधूरा मुझे नहीं चलेगा। बारवां गुणस्थान भी अधूरा है, वो नहीं चलेगा। सम्यक सम्मुख की बात क्या रही, भावभाषण की बात क्या रही, बारवां गुणस्थान तो अधूरा मुझे नहीं चलता, मेरा अधिकार पूरे का है, मुझे पूरा चाहिए, और पूरा मुझे मिलता है इसमें क्या ज्यादा मिल गया, ये तो मेरा अधिकार है। इसमें कोई ज्यादा तो नहीं दे दिया ना, ये तो मेरा अधिकार था, वो मिला है मुझे, चलो इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक आना चाहिए, भावभाषण में या थोड़ा योग्यता थोड़ी हो गई या थोड़ा कुछ आगे थोड़ी राजी होने की बात, तो बहुत सामान्य बात है। इसलिए वो माया ने कहा भाव थे किसी रहित नहीं स्वधर्म संचय नहीं, मेरा तो अहंभाव हो जाता है, थोड़ा कुछ होता है तो अहंभाव हो जाता है, मेरा तो पूर्ण स्वधर्म पूरा होना चाहिए। क्या कहा, भ्रांति रूप से आत्मा प्रभाव का कर्ता होने से शुभाशुभ कर्म की उत्पत्ति होती है। भ्रांति रूप से आत्मा प्रभाव का कर्ता होने से ये स्थिति रही, भ्रांति की स्थिति रही, सफल होने से, ऊपर वाला चलता है कि भ्रांति रूप से आत्मा, जब भ्रांति हुई तो प्रभाव होगा, कर्तापना से प्रभाव होगा, इसका कर्तृत्व हो जाएगा और भोक्तृत्व भी हो जाएगा और इसके फल स्वरूप शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ परिणाम होने लगेगा, शुद्ध परिणाम होने का कोई अवसर आएगा। शुद्ध परिणाम होने के लिए प्रभाव का कर्तृत्व मिट जाना चाहिए। प्रभाव का कर्तृत्व तब मिटता है कि जब स्वरूप की निर्भ्रांत दशा होती है, स्वरूप विषय भ्रांति मिट जाती है, तब होता है। ऐसे तो आप बात सरल है, लेकिन सरल कर रखी है, या हो रखी है कि मैं फलाना फलाना है। जब तुम आत्मा है तो तुम आत्मा है, ऐसा लेने में तुमको क्या आपत्ति है? हाँ, जब तुम आत्मा तो हो, मानो तो भी आत्मा हो, नहीं मानो तो भी आत्मा तो हो ही है। जब तुम जीव हो, आत्मा हो, तो ऐसा मानने में तुमको तकलीफ किस बात की है वो बताओ ना। नहीं नहीं मैं फलाना फलाना नहीं, मैं फलानी फलानी, ये क्या बात है? और ऐसा मानकर या तो कषाय तीव्र करेगा या तो कषाय मंद करेगा और परिभ्रमण के चक्कर में से छूटेगा, भयंकर परिभ्रमण को प्राप्त करेगा। टोट कितना बढ़िया है, भान होने से, भाव होने, मान होने पर परिणामी है, बस उतना ही करना है। कितना करना है? भान करना है। भान कैसे करो? जैसा है वैसा देखो, देखना ही है, करना कुछ नहीं है। आएगा भी अनुभव प्रकाश कल आएगा, मंत्र निहाल, निज निहाल, तो निहाल जैसा है और कुछ करने का नहीं। मैं मनुष्य नहीं लेकिन मुमुक्षु तो खरा के नहीं, मुमुक्षु भी नहीं, त्यागी भी नहीं, गृहस्थ भी नहीं, मुनि भी नहीं, पंडित भी नहीं, गुरु भी नहीं, कोई कर्मजनित अवस्था कोई भी मेरी। इसलिए मूल मार्ग में लिया है कि चारित्र को अणलिंग लिया है। क्या चारित्र को क्या बताया? अणलिंग। चारित्र का कोई चिन्ह नहीं है। मुनि दशा चारित्र का चिन्ह है कि नहीं है? कि नहीं है। तो समय सार में 413 में ना दे दिया है पाषंडी लिंगाणी। क्या बोले? पाखंड, पाषंड में, पाषंड शब्द में से पाखंड आया। ये लिंग है, सब पाखंड है, लिंग मैंने वेश, ये स्वस्त्र दशा, ये निर्वस्त्र दशा, ये पीले पीताम्बर, ये सफेद मंत्र ये फलाने ऐसे तिलक वो जटा ये वो आत्मा, और आत्मा भी अलिंग है, अलिंग ग्रहण किया इसलिए तो उसको अलिंग कहा, अलिंग ग्राह्य नहीं कहा, अलिंग ग्रहण कहा, नाम दे दिया। क्या कहते हैं कि भ्रांति रूप से आत्मा प्रभाव का कर्ता होने से, भ्रांति से प्रभाव कर्ता रूप बने से हो जाता है और शुभ स्वभाव होता है, तो शुभ स्वभाव के निमित्त से शुभ कर्म भोगते हैं, कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्म बंधते हैं, और ये कर्म सफल होने से उस शुभ कर्म का आत्मा भोगता भी होता है, जो कर्म शुभ बंधे नहीं चाहे तो भी बेवशपने से भोगना पड़ेगा। सभान अवस्था में भी जो कर्म बनते हैं ना कभी अल्प तो भी भोगना पड़ता है, तो विवानपने में जो कर्म बनेगा वो तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि तीर्थंकर भगवान को तीर्थंकर प्रकृति का बंध सभान अवस्था में होता है, विमान अवस्था में नहीं होता है, वो ज्ञान दशा में तीर्थंकर प्रकृति बनती है। कितनी कर्म प्रकृति ऐसी है कि जो अज्ञान अवस्था में बनती ही नहीं है, 148 कर्म प्रकृति है, उसमें से 27 कर्म प्रकृति ऐसी है कि जो सम्यक दृष्टि को ही बनती है, मिथ्या दृष्टि को कभी नहीं बनती है, उसकी एक तीर्थंकर प्रकृति भी है, नाम और गोत्र दो होता है उसमें, आठवें से नाम और गोत्र दोनों तीर्थंकर का होता है, तीर्थंकर नाम कर्म और तीर्थंकर गोत्र कर्म, और उसके पीठे भेद पिता भेद भी होता है, जिसका शरीर सुंदर होता है, समचतुर्ष संस्थान होता है, जैसे कि सर्वार सिद्धि का भाव, वो आयु सर्वार सिद्धि का आयु सम्यक दृष्टि को ही बनता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं बनता है, क्योंकि वहां सब सम्यक दृष्टि होता है, वहां कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। तो ये 27 प्रकृति है वो तो सम्यक दृष्टि के मानने को अधिकार है, दूसरे को तो इस प्रकार का पुण्य संचय होता, शुभ शुभ प्रकृति है, अशुभ नहीं है, वो पुण्य संचय इस प्रकार का पुण्य संचय सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। 121 रही, उसमें सम्यक दर्शन होते ही 41 का नाश होता है, इसका मन की विच्छेद हो जाती है सम्यक दर्शन होते ही। हाँ, तो 41 का नाश होता है, बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 नौ गुण स्थान रहा, नौ गुण स्थान में बाकी की ऐसी प्रकृति जाएगी, कोई में 7, कोई में 6, कोई में 8, कोई में 9 जाएगी, 6 से लेकर के 9 एक एक गुण स्थान में नाश जाएगी, नाश हो जाएगी। जबकि पहले पग रखा मोक्ष मार्ग का पहला गुण सीढ़ी पे पैर रखा तो 41 तो उड़ाया, इतना बड़ा लाभ मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने वाले को होता है। 121 का 1/3 गया, 80 रहा ने, 40, 3, 120 हुआ ने, इसमें सम्यक दर्शन होते ही 1/3 प्रकृति का बंध विच्छेद होता है, बाकी छोटी मोटी रही तो कोई गुण स्थान में 6 जाएगी, कोई में 8 जाएगी, कोई में 7 जाएगी, जाएगी जाएगी, प्रवेश में उतना लाभ। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही ग्रैंड गाला ओपनिंग है क्या अपन करते हैं ना, कोई ओपनिंग करते हैं ना तो कभी हमारा ओपनिंग तो ग्रैंड गाला ओपनिंग होता है, बहुत बढ़िया होता है। मोक्ष मार्ग का ओपनिंग भी ऐसा ही है, सुंदरी भाई आनंदो आनंद करो खुशी हो जाओ, इसमें एक दर्शन होते ही इतना बड़ा लाभ। सफल होने से उस शुभाशुभ कर्म को आत्मा को तो वैसे याद आया कि तीर्थंकर देव को 13वें गुण स्थान में सभी अरियंतों को तीर्थंकरों चाहे सामान्य केवल हो चार अघाते रहने चारों शुभ का उदय है नाम गोत्र वेदने और आयु उन चारों में शुभ का उदय होता है चारों शुभ प्रकृति बाकी रहेगी उदय में उसको भोगनी पड़ती है कहाँ तक कि कभी कभी तो अरबों वर्ष तक भोगनी पड़ती है जैसे सिमंदर स्वामी है 16 लाख पूर्व आयु उसका बाकी रहा अरियंत होने के बाद 1 करोड़ पूर्व का आयु है 84 लाख पूर्व सदमस्त अवस्था में गए 16 लाख पूर्व है वो अरियंत अवस्था में बाकी रहे भोगना पड़ेगा कर्म सफल है निष्फल नहीं जाता भले ही उन्होंने सम्यक दर्शन होने के बाद ये बंद किया है आयु का गोत्र का नाम का फिर भी 16 लाख पूर्व तक में एक पूर्व में अरबों के अरबों वर्ष होते हैं कितने एक पूर्व में अरबों के अरबों वर्ष तो पूरा होगा तब सिद्धालय में जाएंगे इसके पहले नहीं जाएंगे कर्म सफल है आयु का बंधन है छुटेगा नहीं वो आत्मा इसको भोगता है वितराग भाव होने से इसका दुख नहीं है सराग भाव होने में कर्म फल भोगते वक्त आत्मा को दुख होता है और वितरागता में इसका दुख नहीं होता है तो सुख दुख से कोई मतलब प्रयोजन रहा ये तो जानने की बात है जरा बहुत होती है बहुत अल्प होता है बहुत अल्प होता है फिर भी अघाती की स्थिति बहुत बड़ी पड़ती है वो घड़ी बात विचित्र है कर्म का घाते की स्थिति अघाते की स्थिति तो विचित्रता बहुत तो ये आयुष है वो अघाते आयुष नाम पुत्र अघाती है उसकी स्थिति लंबी पड़ती है बहुत लंबा आयुष होता है देवलोक में जाएगा तो सागरों का उनका आयुष होगा मनुष्य से भी बड़ा है यही तो ये जो 1 करोड़ पूर्व है ना वो भी बहुत कम है इसके आगे जैसे सागरोपम का आयुष होता है तीर्थ सागर में जाता है सर्वासी दिखाती तीर्थ सागर तक की झेल क्या कैदी हो गया उसे क्या नहीं मालूम मालूम है यहाँ से निकल करके उनको तो अभिज्ञान होता है सबसे अच्छा अभिज्ञान तो वहाँ होता है मालूम है कि यहाँ आयु पूरा होगा मनुष्य होगा मैं और उस मनुष्य को मेरी मुक्ति हो जाएगी फिर भी यहाँ 33 सागर तक झेल सकता नहीं छूट सकता नहीं बंधन में नहीं कोठरी में तो बाहर नहीं आ सकता ये बात है पिंजर सोने का हो चाहे लोहे का हो बेड़ी सोने की हो लोहे के वो क्या फायदा आपको सोने की बेड़ी पहनाएंगे खुश हो जाओ पुरुष होता है बेड़ी पहनाई तो हो गया कंगन क्या यार अच्छा लगेगा क्या पुरुष को कंगन शोभा देता है क्या बेड़ी पहना ही तो क्या हुआ अगर पुरुष पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कंगन पहनाने में आएगा वो कहता है तो वो तो स्त्री बोला लेकिन कुनकुन आचार्य जैसे महान आचार्यों ने नामर्द कहा है स्त्री भी नहीं बोला को नामर्द बोला है पावैया हिजड़ा जिसको बोलता है उसे ऐसा बोला है नपुंसक बोला है उसको लेकिन ये संस्कृत में शब्द है उस शब्द का प्रयोग किया है एक शब्द है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है नपुंसक, कि जो पुरुषार्थ नहीं कर सकता वो नपुंसक है, ऐसा बोला है। और कड़े शब्द का भी प्रयोग किया है, वो भी पुरुषार्थ जगाने की बात है। ऐसा श्री गुरु जगाते हैं, जागृत करते हैं, कि अनंत पीढ़ी का धनी हो तो अनंत पुरुषार्थ का तेरा ताकत है। अब तो सम्यक दर्शन जैसा मामूली पुरुषार्थ नहीं करता क्या? ये तो प्रारंभ की पहली सीढ़ी की बात है, उसमें तो कोई व्रत नहीं है, तप नहीं है, कुछ कठिनाई नहीं है। अरे पंच परमिष्ठ का नाम नहीं लेगा तो भी चलेगा।
परिणमन करता है वह केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान की परिभाषा में नहीं, वो को भी अनेक प्रकार से बनाते हैं ज्ञानी, केवल मैंने मात्र वर्ते निज स्वभाव अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान ते दे सता सदैव मोक्ष। यहाँ तो कितने विशेषण लगाए केवल ज्ञान के, निज स्वभाव ज्ञान में केवल उपयोग, एक अंश भी उपयोग का निज स्वभाव को छोड़कर किसी को विषय करता नहीं। जैसे केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, योग पूर्वक नहीं जानता है, क्या उपयोग नहीं देते? केवल ज्ञानी उपयोग जगत के पदार्थ पर देते हैं नहीं, उपयोग तो देते नहीं, उपयोग का कोई एक अंश भी माने देने में आता है इसको जाने। फिर भी जैसे दर्पण में अन्य पदार्थ का प्रतिबिंब सहज पड़ जा पड़ता है, वैसे शुद्ध निर्मल ज्ञान में लोकालोक का प्रतिबिंब सहज झलकता होता है, सहज झलक जाता है, उपयोग जाता है, क्योंकि केवल उपयोग है। किसमें? निज स्वभाव में, निज स्वभाव का ज्ञान है, उसमें ही उपयोग है, ज्ञान में ही उपयोग है। बाहर उपयोग गया, तन्मयाकार होता है, तन्मयाकार मैंने स्वरूप जो है उसमें तन्मय ली, उपयोग में एक अंश भी चंचलता होती नहीं है, पूरा तन्मय होता है आत्मा का। हाँ, चित्त को चेतना में लीन करें, उपयोग को चेतना में लीन करें, यहाँ तो केवल ज्ञान में परिपूर्ण लीनता, लीनता भी परिपूर्ण, अधूरी लीनता नहीं, साधक अवस्था में लीनता अधूरी होती है, केवल ज्ञान होता है तो लीनता, लीनता तो बारहवें अनुष्ठान में पूरी हो जाती है, केवल ज्ञान में तो होती ही है। जो चारित्र गुण है बारहवें अनुष्ठान में पूरा होता है, परिपूर्ण शुद्ध होता है, परिणमन का पूरा शुद्ध परिणमन होता है, और वो चारित्र गुण को उनका पर्याय कोई लीनता कहते हैं, लीनता है वो चारित्र गुण का पर्याय है, और केवल ज्ञान तेरहवें गुण स्थान में होता है। तो बारहवें गुण स्थान के आखिर में के समय में पूरी लीनता हुई, और तेरहवें गुण स्थान के पहले समय में केवल ज्ञान हुआ, एक समय का अंतर है, लेकिन है चारित्र होता है पहले पूर्ण। सहज स्वभाव से, कृत्रिम रूप से, सहज स्वरूप से, सहज परिणाम ऐसा होता है, स्वाभाविक परिणाम से, निर्विकल्प रूप से, उसमें कोई विकल्प भी नहीं है, परिपूर्ण निर्विकल्पता, निर्विकल्पता भी परिपूर्ण, ऐसे रूप से आत्मा जो परिणाम करता है, ऐसे परिणाम को केवल ज्ञान कहने में आता है, वो केवल ज्ञान का स्वरूप बदलाया है। इस वचनामृत में केवल ज्ञान का स्वरूप बदला है कि केवल ज्ञान ऐसा होता है, इसको भगवान केवल ज्ञान कहते हैं, तीर्वा गुणस्थान वाला वो ऐसा है। अब सम्यक्त्व किसको कहता है कि तथा रूप प्रतीति रूप से जो परिणमन करता है वो सम्यक्त्व है। पर जो केवल ज्ञान की बात कही उसमें स्वभाव स्वभाव सहज स्वभाव रूप से बात आई ना, सहज स्वभाव से, तो स्वभाव की भी प्रतीति आई और मोक्ष की भी प्रतीति आई, तो बीच में जो भी अवस्था होती है उसकी भी प्रतीति आ गई बिना कहे। तो तथा रूप प्रतीति, उसको क्या कहा? तथा रूप प्रतीति, और तथा रूप प्रतीति से जो परिणमन करता है श्रद्धा गुण,
या प्रतीति रूप परिणाम जिसका होता है उसको सम्यक्त्व कहने में आता है। ये सम्यक्त्व है, इसमें स्वरूप की भी प्रतीति है और केवल ज्ञान की भी प्रतीति है, सर्वोत्कृष्ट दशा की भी प्रतीति है और अपना मूल स्वरूप की भी प्रतीति है। ऐसी प्रतीति भाव को ही सम्यक्त्व कहने में आता है। तो बहुत संक्षेप में ये सम्यक्त्व की परिभाषा है, बाकी सम्यक्त्व का विषय तो बहुत गहरा है कि जिस कारण से है, और विशाल भी इतना ही है कि जिस कारण से अनंत गुणों का परिणमन में सम्यक्पणा आ जाता है, तो ये सम्यक्त्व का प्रभाव है, परिणमन में वही सम्यक्त्व का प्रभाव है। ऐसी प्रतीति रूप सम्यक्त्व आए बिना अगर अंग पूर्व का ज्ञान हो तो भी मिथ्या ज्ञान है, और 28 मूल गुण और मुनिपणा शुद्ध पाले तो भी मिथ्या चारित्र है। सम्यक्त्व होने पर भी एक वृत्त पचकान नहीं है और 7 तत्व का 9 तत्व का भी भेद रूप समझ वाला ज्ञान नहीं हो तो भी उसका ज्ञान और चारित्र दोनों सम्यक है, इतना प्रभाव है सम्यक्त्व का। और सर्वगुणांश तो सम्यक्त्व, सर्वगुणों के कुछ न कुछ अंश शुद्ध रूप परिणमन करने लग जाते हैं, उसी को भी सम्यक्त्व कहने में आता है। ये मूल गुण है आत्मा के, सभी गुणों में प्रधान गुण भले ही ज्ञान हो लेकिन मूल गुण तो सम्यक्त्व है, ऐसी बात है। दंशन मूलो धम्मो, धर्म का मूल, मोक्ष का मूल सम्यक् दर्शन है, सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व से क्या होता है, आत्मा भी मुक्ता छूटती नहीं, क्या आत्मसन्मुखता मिटती नहीं? जब आत्मसन्मुखता रहेगी तो पूरा कहां से जुड़ेगा बात, हाँ तो सम्यक्त्व में अंदर जुड़ान होता है तो बाहर कहां से जुड़ेगा, यही बात है। ज्ञान पर्याय का लब्धांश तो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत चर्चा चली है लब्ध उपयोग की, बहुत चले थे तथारूप प्रतीति रूप से जो परिणमन करता है वह सम्यक्त्व है, और मोक्ष मार्ग में इस सम्यक्त्व के कारण से सभी गुण शुद्ध होते हैं और इसकी शुद्धता पनपती रहती है, फिर सम्यक्त्व के कारण से इसकी शुद्धता पनपती है। क्यों कि हर समय ये सम्यक्त्व परिणमन करता है ना, तो इसका पुट लगता है, और जैसे औषधि को पुट देते हैं तो औषधि की ताकत बढ़ती है, जैसे कहते हैं ना 1000 पुटी अब्रक भस्म, तो अब्रक तो अब्रक है लेकिन उसको अग्नि का पुट दिया मैंने, आँच दिया, फिर दोबारा उसको राख हो जाए, फिर उतनी अग्नि दोबारा दिया, ऐसे 1000 बार दिया, तो वो जो राख हुई तो ताकतवत होती है। तो जो टीबी में क्षय रोग में जिसका फेफड़ा खत्म हो गया है उसको ठीक कर देगी अब्रक भस्म देते हैं, आयुर्वेद में जिसको क्षय रोग होता है उसको अब्रक भस्म खिलाते हैं अच्छा हो जाता है। अब्रक मायका जैसा, मायका आप लोगों को तो मायका का पता होना चाहिए माइका, माइका के मेंशन है तो वो वैल्यूबल चीज है, बहुत अच्छी चीज बनती है। ये टोस्टर आता है ना, टोस्टर, टोस्टर में वही अब्रक का प्रयोग है, अब्रक के पड़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत जगह उसका प्रयोग है में है और कई जगह पे। तो कहते हैं कि इसको सम्यक्त्व कहते हैं। अब सम्यक्त्व के भेद मैंने प्रकार के